यूएन रेडियो से समाचार परिक्रमा के साथ मैं हूं महबूब खान। 4 सितंबर 2020 के इस साप्ताहिक बुलेटिन की सुर्खियां। दुनिया युवाओं के आशावाद, तकनीकी कौशल और उनकी ऊर्जा को निखारे बिना नहीं हासिल कर सकती टिकाऊ विकास लक्ष्य, कहा महासचिव ने। कोरोना वायरस संकट काल में हर देश में शिक्षा हासिल करना बच्चों के लिए चुनौतीपूर्ण, शरणार्थी बच्चे खास तौर पर ज्यादा प्रभावित। कोविड-19 और उसके सामाजिक आर्थिक दुष्प्रभाव 4,70,00,000 महिलाओं को धकेल सकते हैं गरीबी के गर्त में। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC की मुख्य अभियोजक और एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी पर पाबंदियां लगाने की अमेरिकी घोषणा पर चिंता और कोविड-19 पर अपडेट के साथ साथ कुछ अन्य समाचार भी। हर बार की तरह हम आपको याद दिलाते चलें कि विश्व परिप्रेक्ष्य वाली मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलें। पता है news.un.org/hi। आप अपने मोबाइल फोन पर हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है UN न्यूज रीडर। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने कहा है कि दुनिया युवाओं के आशावाद, तकनीकी कौशल और उनकी ऊर्जा को निखारे बगैर टिकाऊ विकास लक्ष्यों के 2030 एजेंडा या जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने की उम्मीद नहीं कर सकती। महासचिव ने मंगलवार को आयोजित एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम में युवाओं के बेहतर भविष्य और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए डिजिटल समाधानों, शिक्षा और ट्रेनिंग में निवेश किए जाने का आह्वान किया। यूएन प्रमुख ने उच्च स्तरीय कार्यक्रम जेनरेशन अनलिमिटेड के दौरान सरकारों, व्यवसायों और बहुपक्षीय एजेंसियों के शीर्ष नेताओं व अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी ने लंबे समय से चली आ रही विषमताओं को उजागर कर दिया है। जेनरेशन अनलिमिटेड एक वैश्विक साझेदारी है जिसका लक्ष्य 10 से 24 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों और युवाओं के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण व रोजगार के अवसर सुलभ बनाना है। महासचिव गुटेरेश ने कहा कि बच्चों और युवाओं की मौजूदा स्थिति संकट के भीतर एक और संकट जैसी है। उन्होंने कहा कि मेरी पीढ़ी हमारे समक्ष मौजूद वैश्विक चुनौतियों के खिलाफ उपयुक्त जवाबी कार्रवाई करने में विफल रही है। इस वर्चुअल कार्यक्रम की थीम आधी दुनिया को अवसरों से जोड़ना, यानी कनेक्टिंग हाफ द वर्ल्ड टू अपॉर्चुनिटीज रखी गई थी, जिसमें प्रतिभागियों ने 3.5 अरब बच्चों और युवाओं तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का संकल्प लिया हुआ है। इसके तहत वर्ष 2030 तक विश्व स्तरीय डिजिटल समाधान, दूरस्थ पढ़ाई यानी डिस्टेंस लर्निंग और कौशल विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। इस बीच महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने सरकारों का आह्वान किया है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 से उबरने की कार्रवाई के हर आयाम में अर्थपूर्ण जलवायु कार्रवाई को समाहित करना होगा। टिकाऊ पुनर्बहाली पर चर्चा के लिए गुरुवार को आयोजित एक वर्चुअल बैठक में यूएन प्रमुख ने मंत्रियों को संबोधित करते हुए ध्यान दिलाया कि इस समय दुनिया दो गंभीर संकटों से जूझ रही है, कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन। इस मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन जापान ने किया था, जिसमें अनेक देशों से वरिष्ठ अधिकारियों, युवा समूहों, नागरिक समाज संगठनों, व्यवसायों और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम के लिए वैक्सीन की खरीद और आपूर्ति प्रयासों में यूएन एजेंसी अग्रणी भूमिका निभाएगी। यूनिसेफ ने घोषणा की है कि सभी देशों तक सुरक्षित वैक्सीन का त्वरित और न्यायसंगत ढंग से वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। 170 देशों के लिए वैक्सीन की खरीद और वितरण के इस प्रयास को विश्व में अब तक के सबसे व्यापक और तेज गति से संचालित अभियान के रूप में देखा जा रहा है। कुछ और जानकारी के साथ सचिन गौड़।
यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरिएटा फोर ने कहा है कि वैक्सीन आपूर्ति के लिए उनका संगठन अपनी अनूठी क्षमताओं का उपयोग करेगा ताकि सभी देशों के पास वैक्सीन की पहली खुराक जल्द से जल्द न्यायसंगत ढंग से पहुंच सके। गौरतलब है कि यूनिसेफ दुनिया का सबसे बड़ा इकलौता वैक्सीन खरीदार है। हर वर्ष नियमित टीकाकरण अभियानों के अंतर्गत 100 देशों की ओर से विभिन्न प्रकार की वैक्सीनों की 2 अरब से ज्यादा खुराक खरीदी जाती है। बताया गया है कि दवा निर्माता कंपनियां सामूहिक रूप से अगले 1-2 सालों के लिए अभूतपूर्व संख्या में वैक्सीन का उत्पादन करने के लिए तैयार हो गई हैं। लेकिन कंपनियों का कहना है कि व्यापक स्तर पर किए जाने वाले उत्पादन प्रयासों के लिए निवेश अन्य कई बातों पर निर्भर करेगा, जैसे कि वैक्सीन के परीक्षण में सफलता मिलना, खरीद समझौतों को अग्रिम मंजूरी मिलना, धनराशि का इंतजाम होना और नियामक व पंजीकरण व्यवस्था का दुरुस्त होना। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रियसिस ने G20 समूह के विदेश मंत्रियों के साथ अर्थव्यवस्था, सीमाओं और समाजों को खोलने पर चर्चा की है। उन्होंने ध्यान दिलाया है कि आर्थिक और सामाजिक जीवन को पटरी पर लाने के लिए 4 प्राथमिकताओं का ध्यान रखना होगा।
First, prevent amplifying events. In many countries, we
UN स्वास्थ्य एजेंसी के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रियसिस कह रहे थे कि ऐसे आयोजनों पर रोक लगाई जाए जिनमें वायरस तेजी से फैलता हो, निर्बल समूहों जैसे कि वृद्धजन, पहले से बीमार चल रहे लोगों व जरूरी सेवाओं में जुटे लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा सुनिश्चित की जाए। खुद को और अपने समुदायों को संक्रमण से बचाने के लिए सभी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाएं और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इस महामारी ने गैर संचारी रोगों से निपटने की अहमियत को भी रेखांकित किया है। रिसर्च के मुताबिक डायबिटीज, मोटापे और धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों के इस बीमारी से गंभीर रूप से पीड़ित होने का जोखिम ज्यादा होता है। अगले सप्ताह गैर संचारी बीमारियों जैसे हृदय रोग, कैंसर, डायबिटीज पर कार्रवाई का वैश्विक सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत COVID-19 के दौरान और उसके बाद भी इन बीमारियों की रोकथाम के उपायों पर जागरूकता पर जोर दिया जाएगा।
कोरोना वायरस संकट काल में दुनिया के हर देश में शिक्षा हासिल करना बच्चों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है, लेकिन शरणार्थी बच्चे इससे खास तौर पर ज्यादा प्रभावित हुए हैं। शरणार्थी मामलों की संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UNHCR ने गुरुवार को एक नई रिपोर्ट पेश करते हुए आशंका जताई है कि बड़ी संख्या में शरणार्थी बच्चे स्कूल बंद होने, ज़्यादा फीस होने या घर पर रहकर पढ़ाई करने के लिए टेक्नोलॉजी तक पहुंच ना होने के कारण अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाएंगे। उधर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने पर विश्व भर में कुल 1.5 अरब छात्रों में से 2/3 छात्र स्कूल बंद होने या कक्षाओं पर मंडराती अनिश्चितता से प्रभावित हैं। यूएन एजेंसी के मुताबिक इस वर्ष 1/3 छात्रों के ही स्कूल लौटने की संभावना है और लड़कियों की शिक्षा पर सबसे ज्यादा संकट मंडरा रहा है। यूएन न्यूज हिंदी की अंशु शर्मा ने कुछ इन्हीं मुद्दों पर बातचीत की संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR के भारत में एक सहायक अधिकारी कीरी यात्री से। सुनिए ये इंटरव्यू।
UNHCR की जो नई रिपोर्ट कमिंग टुगेदर फॉर रिफ्यूजी एजुकेशन पेश की गई है, उसमें किन प्रमुख बातों का जिक्र है?
इसमें एक प्राइमरी एजुकेशन का जिक्र किया गया है, सेकेंडरी एजुकेशन का जिक्र किया गया है और इसमें जो कुछ आंकड़े पेश किए गए हैं उसमें ये बताया गया है कि 77% शरणार्थी बच्चे स्कूलों में पंजीकरण है, लेकिन माध्यमिक स्तर पर यह आंकड़े गिरकर 31% और हाई स्कूल में महज 3% रह जाते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि पिछले साल काफी सारे लोकल कम्युनिटीज, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने मिल करके जो रेफ्यूजी एजुकेशन में काम किया है उससे कई सारे फायदे भी हुए हैं। तो रिपोर्ट एक मिक्स है और 12 देशों से लिए गए आंकड़ों के ऊपर बेस्ड है।
तो दक्षिण एशिया के देशों में और खासतौर पर भारत में क्या स्थिति है फिलहाल कोविड महामारी के मद्देनजर पे? अगर खासतौर से देखा जाए तो उन इलाकों में बच्चों की शिक्षा किस तरह प्रभावित हुई है?
इंडिया में करीबन 40,000 शरणार्थी जो है UNHCR के साथ रजिस्टर्ड हैं और बाकी शरणार्थी भी हैं जो कि करीबन जो श्रीलंका से आते हैं, तिब्बत से आते हैं और कई पड़ोसी देशों से आते हैं और उनके आंकड़े सरकार के पास उपस्थित हैं, जो कि कुल मिला के करीबन रेफ्यूजी का अगर आंकड़े देखे जाए तो करीबन 2,00,000 के करीब होते हैं। महामारी के कारण चूंकि स्कूल बंद हैं और बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और उनके पास डिजिटल एक्सेस नहीं है, कई बच्चों के घरों में इंटरनेट नहीं है तो किसी के घर में बिजली नहीं है, अगर बिजली और इंटरनेट है तो उनके पास वो डिवाइस नहीं है जिससे वो स्कूलों से जुड़े रह सके। तो जहाँ तक बात करें अभी महामारी में बच्चों की हालत की, वो ये है कि बच्चे डिजिटली एक्सक्लूडेड हैं, जिसके लिए काफ़ी सारे समुदाय जो कि होस्ट कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जहाँ तक UNHCR का बात है या पार्टनर का बात है, उस पर अब काफ़ी फोकस हो रहा है कि हमें कोशिश कर रहे हैं कि उनको डिजिटली इंक्लूड करें।
तो ये भी माना जा रहा है कि कोविड-19 के कारण शरणार्थी लड़कियों की आधी आबादी स्कूल खुलने पर भी कक्षाओं में नहीं लौट पाएगी, तो क्या माना जाए कि महामारी के कारण लड़के और लड़कियों की शिक्षा के बीच की जो असमानताएं हैं वो और गहरा रही हैं?
अगर इसी तरीके से महामारी का इम्पैक्ट रहेगा तो लड़कियों का स्कूल वापस जाना खासतौर से इन 12 देशों में बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो भी प्रतिशत, जहां तक मेरे ख्याल से उसमें 10% की बात की गई है, अगर वो जो स्कूल ऑलरेडी जा रही थी और अगले महीने जो स्कूल खुलेंगे उसमें वो शायद वापस ना आ पाए। जेंडर की जहां तक बात होती है रेफ्यूजी सिचुएशन में, जो इश्यूज डिस्प्लेसमेंट से पहले होते हैं वो तो रहते ही हैं, पर महामारी ने वो जेंडर गैप्स थोड़े बढ़ा देने में एक एडेड लेयर बना दिया है।
क्या लगता है इसके क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, खासतौर पर शरणार्थी बच्चों को लेकर जो पहले से ही कई तरह के संकटों का सामना कर रहे हैं?
क्योंकि अब वैश्विक महामारी के मद्देनजर काफी स्कूल जो बंद किए जा चुके हैं और अब ये भी नहीं पता कि स्कूल कब तक खुलेंगे और ये महामारी कब तक चलेगी, तो इसमें ये एक डर लगा हुआ है कि कहीं इन बच्चों का शिक्षा पर से एक जो रेगुलरिटी है वो छूट ना जाए। तो उसके लिए इस रिपोर्ट में बोला गया है कि सभी लोगों से अनुरोध है कि वो साथ मिलकर रेफ्यूजी बच्चे और उनकी होस्ट कम्युनिटी को जहां पे वो रहते हैं उनको शिक्षा से जुड़े रहने के लिए इनोवेटिव तरीके इजाद करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो बहुत मेहनत करी थी पिछले कुछ सालों में उस मेहनत पर पानी फिर जाएगा और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 है एजुकेशन से रिलेटेड, उसको अचीव करने में भी दिक्कत आ सकती है।
इस इंटरव्यू का विस्तृत संस्करण हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, पता है news.un.org/hi। वैश्विक महामारी कोविड-19 और उसके सामाजिक आर्थिक दुष्प्रभाव लगभग 4,70,00,000 महिलाओं को गरीबी के गर्त में धकेल सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने बुधवार को एक नई रिपोर्ट जारी की है जो दर्शाती है कि कोरोना वायरस संकट के कारण चरम गरीबी से निपटने में अब तक हुई दशकों की प्रगति की दिशा उलटने का खतरा पैदा हो गया है। यूएन के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि कोविड-19 से उबरने के दौरान पुनर्बहाली कार्रवाई और नीतिगत प्रयासों के केंद्र में महिलाओं को रखना होगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने आगाह किया है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के विनाशकारी सामाजिक और आर्थिक प्रभावों से दुनिया भर में महिलाएं व लड़कियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में वर्षों व कई पीढ़ियों से हो रही प्रगति को कोरोना वायरस संकट की भेंट न चढ़ने देने के लिए व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। ज्यादा जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने सोमवार को नागरिक समाज संगठनों की युवा महिलाओं के साथ एक वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण पहले ही लैंगिक समानता और महिला अधिकारों पर सीमित व नाजुक प्रगति को ठेस पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि समुचित प्रयासों के अभाव में एक पीढ़ी या अब तक हुई प्रगति को खोने का खतरा है। महासचिव गुटेरेश ने स्वास्थ्य, जरूरी सेवाओं, शिक्षा, देखभाल कर्मियों और अन्य भूमिकाओं में महिलाओं के अहम योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि महिलाएं घर से बाहर और अंदर लाखों करोड़ों की मदद कर रही हैं, लेकिन समाज में कायम विषमताओं और पूर्वाग्रहों के कारण उनके योगदान को पहचाना नहीं जाता। कोविड-19 महामारी के दौरान अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को अपने रोजगार खोने के कारण वित्तीय असुरक्षा, नियमित आय के अभाव और प्रभावी सामाजिक संरक्षा के दायरे से बाहर होने जैसी अन्य चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ध्यान दिलाया कि महामारी से निपटने के एहतियाती उपायों के कारण लागू होने वाली तालाबंदी व सख्त पाबंदियों के कारण लिंग आधारित हिंसा के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। महिलाओं को अक्सर उनके साथ दुर्व्यवहार करने वाले लोगों के साथ घरों में ही सीमित रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। संक्षेप में कहें तो महामारी ने उन बाधाओं को उजागर करते हुए और भी ज्यादा गहरा बना दिया है जिनका सामना महिलाएं अपने अधिकारों को हासिल करने और अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने में करती हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संस्था यूएन विमेन और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा कराए गए एक अध्ययन में कहा गया है कि वैश्विक महामारी कोविड 19 और उसका सामाजिक आर्थिक दुष्प्रभाव 4,70,00,000 महिलाओं को गरीबी के गर्त में धकेल सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने बुधवार को एक नई रिपोर्ट जारी की है जो दर्शाती है कि कोरोना वायरस संकट के कारण चरम गरीबी से निपटने में अब तक हुई दशकों की प्रगति की दिशा उलटने का खतरा पैदा हो गया है। यूएन के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि कोविड 19 से उबरने के दौरान पुनर्बहाली कार्रवाई और नीतिगत प्रयासों के केंद्र में महिलाओं को रखना होगा।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने अमेरिका के उस फैसले पर चिंता जताई है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी की मुख्य अभियोजक और एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी पर पाबंदियां लगाने की घोषणा की गई है। यूएन प्रमुख के प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि मौजूदा घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है। गौरतलब है कि द हेग शहर स्थित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों द्वारा कथित युद्धापराधों की जांच की तैयारी कर रहा है जिस पर अमेरिका ने विरोध जताया है। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पेयो ने आईसीसी पर आरोप लगाया है कि न्यायालय अमेरिकी नागरिकों को उसके न्यायिक क्षेत्र में लाने की गैरकानूनी कोशिशें कर रहा है। अमेरिका ने न्यायालय की मुख्य अभियोजक फतू बेंसुडा और एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी फाकिसो मोचोचोको पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। वर्ष 2004 में अपनी स्थापना के बाद से ही न्यायालय अमेरिका, रूस और चीन सहित अन्य देशों की आलोचना का सामना करता रहा है। अनेक देशों ने न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में शामिल होने पर मोहर लगाने से इनकार किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने आईसीसी को पूरी तरह भ्रष्ट और खंडित संस्था करार देते हुए कहा है कि अमेरिका ने कभी रोम संविदा पर हस्ताक्षर नहीं किए जिसके आधार पर इस कोर्ट का गठन हुआ था। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय अफगानिस्तान में कथित युद्धापराधों की जांच की तैयारियों में जुटा है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिकी नागरिकों को अदालत के न्यायिक क्षेत्र में लाने की नाजायज कोशिशें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के प्रवक्ता स्टेफान दुजैरिक ने बताया कि घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है। यूएन प्रवक्ता ने भरोसा जताया है कि व्यक्तियों पर पाबंदियां लगाते समय मेजबान देश के दायित्वों का भी ध्यान रखा जाएगा जिन्हें न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय समझौते के तहत तय किया गया है। आईसीसी की मुख्य अभियोजक के तौर पर फतू बेंसुडा सुरक्षा परिषद की अहम बैठकों में शामिल होने के लिए अमेरिका की यात्रा करती रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के कामकाज की निगरानी करने वाली असेंबली ऑफ स्टेट पार्टीज के अध्यक्ष ओगोन क्वान ने इन पाबंदियों को अभूतपूर्व बताते हुए खारिज कर दिया है। उन्होंने आईसीसी को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय बताया है जो रोम संविदा में तय प्रावधानों के तहत ही संचालित है।
वर्ष 2019 में भारत की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास इतना धुंधलका छा गया था कि विमानों की उड़ानों का रास्ता बदलना पड़ा, हजारों स्कूल बंद करने पड़े और देश की राजधानी में लोगों को या तो घरों के भीतर ही रहने या फिर फेस मास्क पहनने की सलाह दी गई। सवाल है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? ऐसी खबरें सुनने पर ये प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक लगता है कि शायद किसी वायरस संक्रमण या बीमारी से बचने के लिए एहतियाती उपायों के तहत ये कदम उठाए गए होंगे, मगर ऐसा दरअसल राजधानी दिल्ली की फिजा में प्रदूषण की मोटी चादर जम जाने के कारण उसका तोड़ निकालने के रास्ते तलाश करने की जद्दोजहद में किया गया। इस प्रदूषण ने दिल्ली वासियों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया। इसके कारण इतनी गहरी धुंध छा गई कि दिखाई देना बंद हो गया और इसी कारण हवाई यात्रा एक जोखिम बन गई। भारत इस वर्ष फिर ऐसे ही किसी संकट का सामना करने की तैयारी कर रहा है जब फिजा जहरीली हो सकती है। भारत के उत्तरी इलाकों में किसान शरद ऋतु या पतझड़ के मौसम में नई फसल के लिए तैयारियों के तहत पुरानी फसल के बचे कुचे तत्वों को खेती में ही जला देते हैं। इस आग की ऊंची लपटों से निकलने वाला धुआं राजधानी दिल्ली की फिजा को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा निर्धारित मानकों से 14 गुना ज्यादा तक खतरनाक बना देता है। ऐसे में देश के एक बहुत बड़े हिस्से में कोहरे की इतनी मोटी चादर ढक जाती है जिसे अंतरिक्ष से भी आसानी से देखा जा सकता है। बेशक भारत में ये स्थिति बहुत हैरान करने वाली है, मगर ये कोई अकेला मामला नहीं है। दुनिया के अन्य हिस्सों में भी किसान अपने खेतों में हर साल बड़े पैमाने पर आग लगा देते हैं, जिससे भारी वायु प्रदूषण फैलता है। और ये तो मालूम ही है कि वायु प्रदूषण के कारण दुनिया भर में हर साल लगभग 70 लाख लोगों की मौत हो जाती है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब महबूब खान को इजाजत।